हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के कार्यक्रम में। सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वर्षा के इस ऋतु में भी, बारिश के मौसम में आप लोग सब इतनी तादाद में आ रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज के हमारे रविवार के कार्यक्रम का शीर्षक हम रखें कि इस वर्षा ऋतु में हम कौन कौन सी आध्यात्मिक शिक्षाएं ले सकते हैं इस वर्षा ऋतु से। और इनके विषय में और किसी ग्रंथ में नहीं अपितु अमल पुराण श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि हम आध्यात्मिक शिक्षाएं कैसे सीख सकते हैं इस वर्षा ऋतु से। तो इसलिए आज का हमारा शीर्षक है आध्यात्मिक शिक्षाएं बारिश के इस मौसम से। ठीक है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया है कि हमें सबसे पहले अपने आप का गुरु बनना है। आत्मैव गुरुर एव, कि अपने आप से हम क्या क्या सीख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम जब इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो भौतिक प्रकृति से हम क्या क्या साक्षात्कार निकाल सकते हैं, कौन कौन से गुण, सद्गुण, दुर्गुण हम इस भौतिक प्रकृति में देखते हैं जिसके द्वारा हमें प्रतिकूल या अनुकूल शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए जब हम सत्संग में आते हैं तो केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि सत्संग में आकर जब मैं मंदिर में बैठकर जो कुछ सुनता हूं बस वही मेरा उस दिन का सत्संग है। भगवान जैसे गीता में कहे हैं कि वो इस पूरी सृष्टि में विद्यमान है, अर्थात उन परम सत्य का संग हम पूरी सृष्टि में कर सकते हैं। केवल मंदिर में आकर उनके अर्च विग्रह के सामने बैठकर नहीं, केवल, हालांकि मंदिर में तो कर ही सकते हैं, परंतु हमारा साक्षात्कार इतना गहरा होना चाहिए कि जब हम मंदिर से बाहर भी जाएं, उन बच्चों को कोई संभालेगा बाहर? जब हम मंदिर से बाहर भी जाएं तो साक्षात्कार होना चाहिए कि हर एक वस्तु भगवान से संबंधित है। हालांकि अब तक भौतिक संसार में रहते हुए हमने एक बात का साक्षात्कार तो कर लिया है कि कैसे हर एक वस्तु मेरे इंद्रिय भोग के संबंध में है। इसका साक्षात्कार सब लोग कर लेते हैं कि चाहे वो वर्षा ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे शरद ऋतु हो, कोई भी ऋतु हो, वो मेरे इंद्रिय भोग के लिए कैसे उपयुक्त है। परंतु भागवत के अनुसार हमें यह समझना है कि हमारा दृष्टिकोण इतना गहरा और इतना विशाल होना चाहिए कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति के संपर्क में हम आए, कैसे उसे भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में देखें। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार अपने मॉर्निंग वॉक पर थे और सुबह का समय जब सूर्योदय हो रहा था तो बहुत सुंदर दृश्य था और सभी भक्त श्रील प्रभुपाद को कहने लगे कि श्रील प्रभुपाद इस सूर्योदय को देखकर बहुत सत्व गुण की अनुभूति होती है, कितना सुंदर है ये सूर्योदय आज। तो श्रील प्रभुपाद ने तुरंत कहा कि यदि ये सूर्योदय इतना सुंदर है तो इस सूर्य को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और तुरंत श्रील प्रभुपाद ने उस प्राकृतिक दृश्य को भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में देखा। और श्रील प्रभुपाद तो ऐसी ऐसी चीजें भगवान के संदर्भ में देख रहे थे। एक बार श्रील प्रभुपाद ने कुछ लोगों को बस की लाइन में खड़े हुए देखा और श्रील प्रभुपाद उनको देखकर रोने लगे। अब सोचिए, जब हम बस की लाइन को देखते हैं तो क्या रोना आता है? स्वयं के लिए रोना आता होगा जब खड़े होंगे उस लाइन में। परंतु श्रील प्रभुपाद वो उनके विषय में सोच रहे थे जो लाइन में खड़े थे और ये कह रहे थे श्रील प्रभुपाद कि ये सब भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद। आप लोग एक जगह बैठ जाइए, ये लोग सब भगवान श्री कृष्ण के पार्षद और ये आध्यात्मिक संसार को छोड़े हुए इस भौतिक संसार में केवल एक बस की लाइन के लिए इतना कठोर परिश्रम कर रहे हैं। ये सोचते हुए श्रील प्रभुपाद की आंखों से आंसू आए। तो श्रील प्रभुपाद पूरी सृष्टि में हर जगह पर भगवान से संबंधित स्थितियों को, व्यक्तियों को देखने का प्रयास, हालांकि उनको तो प्रयास नहीं, उनका तो दृष्टिकोण ही वैसा था। तो इसलिए जब हम हमारे चारों तरफ वस्तुओं को देखते हैं तो सत्संग में आने का परिणाम क्या होना चाहिए कि हम उन वस्तुओं को कैसे भगवान से संबंधित देखें। जब वैसा दृष्टिकोण बनने लगेगा तब हमें समझना चाहिए कि हमारा सत्संग सफल हो रहा है। कि हम इस कमरे से बाहर जब जाते हैं और जो कुछ देखते हैं इस कमरे से बाहर, उसे भगवान से संबंधित देखते हैं, उसे हम क्या भगवान की शक्ति मानकर देखते हैं या केवल जड़ पदार्थ या अपनी इंद्रिय भोग, इसके विषय में देखते हैं। इसलिए आज का ये प्रवचन हम सबको प्रेरित करने के लिए है कि हम बारिश के इस मौसम में, और बारिश का मौसम कब तक चलता रहेगा? आने वाले और 3 महीना। तो इस बारिश के मौसम में हम कैसे इस बारिश के मौसम के अलग अलग पहलुओं को भगवान के संदर्भ में कैसे देखें, और ये सब कुछ श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि हमें कोई बाहर से अलग से कहीं दृष्टिकोण लाकर हमारे आंखों में नहीं डालना। ये सब भागवत का दृष्टिकोण है, केवल इसे हमें समझना है बस, और फिर उस तरीके से आने वाले 3 महीने में इस बारिश के मौसम में हमें कृष्ण भावना भावित होना है। होना है? हालांकि पूरा एक अध्याय है दशम स्कंद में श्रीमद् भागवत के, जहां पर वर्षा एवं शरद ऋतु का वर्णन किया गया है बहुत विस्तार से, और उसमें गूढ़ दर्शन शास्त्र बताया गया है, फिलॉसफी, कि हर एक वर्षा और शरद ऋतु के पहलू को सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कृष्ण भावनामृत ज्ञान से संबंधित जानकर सुनाया। अब सोचिए, परीक्षित महाराज दशम स्कंद सुनने तक 4 दिन बीत चुके थे, 4 दिन उनके बीत चुके हैं, और उन 4 दिनों में परीक्षित महाराज ने न तो कुछ खाया, न पिया, न वो सोए। तो सोचिए कि साधारण व्यक्ति की हालत क्या होगी, 4 दिन बिना खाए पिए सोए। और ऐसे व्यक्ति को सुखदेव गोस्वामी अब वर्षा का वर्णन विस्तार से कर रहे हैं। जिसने कुछ पिया नहीं है 4 दिन से, वर्षा का वर्णन। जैसे मुझे याद है, ये जो पांडव निर्जल एकादशी गई तो लंदन में कुछ भक्तों ने मुझे बुलाया था प्रोग्राम के लिए, पांडव निर्जल एकादशी के। और प्रोग्राम शुरू हुआ था रात के 9 बजे, क्योंकि वो पूरी रात भर जागने वाले थे। तो मैंने कहा, आप लोग सोओगे नहीं? अरे नींद कहाँ आने वाली है, ना तो कुछ पिया है ना खाया है। तो जब टैंक में कुछ गया ही नहीं है तो खाली है गाड़ी, नींद नहीं आने वाली। तो सबकी हालत ऐसी थी, और वो भी लंदन, तो वहां पर इतनी ठंड होती है। मैं सोच रहा था आप लोगों को भारत होना चाहिए, पांडव निर्जल एकादशी के दिन यदि आप भारत में रहो, और वो भी उत्तर भारत में, तब एक एक क्षण का महत्व पता लगता है उस दिन का। मैं सबसे पहली पांडव निर्जल एकादशी वृंदावन में मैंने की, सोची जून के महीने में, और पूरे रात भर मुझे, मैंने बचपन से लेके तब तक जितने अलग अलग सरोवर, स्विमिंग पूल, नदी, इनमें मैंने भ्रमण किया, तैरा था, वो सब मुझे ध्यान में आ रहे थे। तो ये जो इस बार की पांडव निर्जल एकादशी का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया रात के 9 बजे, तो हालत सबकी ऐसी थी, कोई किसी के सहारे बैठा है, खड़ा है। तो मैंने प्रवचन में केवल प्रसाद का विस्तृत वर्णन किया। अलग अलग प्रकार के व्यंजन, खाद्य पदार्थ, और उन्हें कैसे बनाया जाता है, और वो जब पकते हैं तो कैसे उसकी सुगंध आती है, दिखने में वो कैसे होते हैं, तो वो सब बाद में बोले कि आपको ये प्रवचन आज ही सुनाना था। और पूरा प्रवचन सुनने के पश्चात, कोई महाप्रसादी तो है नहीं, तो उनमें से कुछ लोग इतने ज्यादा वो आतुर हो गए कि उन्होंने सोचा कि ये जो कुछ इन्होंने आज सुनाया, इतने सारे प्रसाद का वर्णन किया, उसमें से कम एक तो हम बनाएंगे द्वादशी में तोड़ने के लिए। तो परीक्षित महाराज, उनको सुखदेव गोस्वामी विस्तार से वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। और बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे सुखदेव गोस्वामी कितनी छोटी छोटी बातों पर, वर्षा ऋतु की छोटी छोटी बातों पर गौर करते हुए वो परीक्षित महाराज को सिखा रहे हैं, और हम सबको उनके द्वारा, कि हमें कैसे अपने भक्ति के सिद्धांत को समझना है। तो इसलिए हालांकि बहुत सी शिक्षाएं हैं, परंतु उनमें से हम दस प्रतिकूल एवं दस अनुकूल शिक्षाओं को लेंगे। और आज तो सारे 20 नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम आज केवल 10 प्रतिकूल शिक्षाएं जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं उन्हें सीखने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात अगले रविवार, बारिश का मौसम जारी रहेगा, तो अगले रविवार को हम लेंगे 10 अनुकूल शिक्षाएं कौन सी हैं जो हम वर्षा ऋतु से सीख सकते हैं। अब देखिए, कोई भी वस्तु जो है उसमें प्रतिकूल एवं अनुकूल इस प्रकार के गुण होते हैं, और ये हमारी दृष्टिकोण पर है कि हम उसे किस तरीके से लेते हैं। कई बार जो प्रतिकूल गुण हैं वो कई लोग अनुकूल रूप से लेते हैं उसे, कि यदि वर्षा को ही हम लें तो वर्षा में बहुत से अनुकूल गुण हैं और बहुत से प्रतिकूल गुण हैं, परंतु अलग अलग व्यक्तियों को यदि आप पूछो तो उनका अलग अलग मत होगा उसी वर्षा के प्रतिकूल और अनुकूल गुण को लेते हुए। इसलिए हम सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनना चाहते हैं कि शुक मुनि क्या कहते हैं कि कौन से प्रतिकूल हैं और कौन से अनुकूल। सबसे पहले वर्षा के जल के विषय में कहा गया है कि वर्षा का जो जल है वो सबसे स्वच्छ जल माना गया है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। और चैतन्य शिक्षामृत में भी चैतन्य महाप्रभु इस उदाहरण को देते हैं कि जीव की चेतना वर्षा के जल के समान है, बहुत शुद्ध, अति शुद्ध। और जैसे कि वर्षा का जल जब बादलों से नीचे उतरता है तो जमीन पर स्पर्श होने से पहले वर्षा का जल सबसे स्वच्छ जल माना गया है, उससे स्वच्छ जल और कोई नहीं। कई बार हम उसे इकट्ठा करते थे किसी बर्तन में और उसे पीने का प्रयास करते थे। आप लोग ने कभी किया है सीधे बारिश का पानी किसी बर्तन में? परंतु वो भी स्वच्छ नहीं रहता, क्योंकि बर्तन इतना स्वच्छ नहीं, चाहे उसे कितने भी साबुन से आप घिसो। इसलिए वर्षा का स्वच्छ जल कौन पी सकता है? चातक पक्षी। केवल चातक पक्षी उस वर्षा का स्वच्छ जल पी सकता है। तो यह उदाहरण दिया गया है कि हम सब की चेतना जब हम आध्यात्मिक संसार से टपके, जैसे वर्षा का जल जब बादलों से टपकता है, तो हम भी उसी प्रकार से आध्यात्मिक संसार से नीचे गिरे, तो उस वर्षा के जल के समान हम शुद्ध। परंतु जैसे ही वर्षा का जल इस पृथ्वी को स्पर्श करता है तो पृथ्वी में जितना भी प्रदूषण है उस जल में आ जाता है। तो वैसे ही इस भौतिक संसार का जितना प्रदूषण है वो हमारी चेतना पर चढ़ने लगता है। क्या क्या प्रदूषण है इस भौतिक संसार का? जैसे सबसे पहले यदि वर्षा के जल में क्या क्या प्रदूषण आते हैं, मिट्टी, कचरा, कूड़ा करकट, पेट्रोल डीजल, आजकल तो बहुत कुछ लिस्ट लंबा होते जा रहा है कलयुग में प्रदूषण का, कि कितने सारे प्रदूषण उस वर्षा के जल में आ सकते हैं। और चेतना में प्रदूषण किस प्रकार का आता है जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं? भौतिक इच्छाएं कितनी हैं? कोई लिस्ट नहीं। हमारे अनर्थ उनका लिस्ट है, परंतु एक एक अनर्थ वो कितना गहरा है कोई उसे नाप नहीं पाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये 6 अनर्थ इस भौतिक प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक क्लेश, 24 पदार्थ इस भौतिक संसार के, और तन्मात्रा हमारी इंद्रियों के लिए जो अलग अलग विषय वस्तु हैं, वो कितने सारे अलग अलग प्रकार के प्रदूषण हैं जो हमारी चेतना के ऊपर एक एक कर कर आरोपित होते हैं। और साधना भक्ति है क्या? जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, भगवान के भक्तों के संग में आते हैं, तो वो पद्धति है फिल्ट्रेशन। उस शुद्ध जल को प्रदूषण से अलग करना। तो हम लोग सब एकत्रित होते हैं किस लिए? ताकि हमारी जो शुद्ध चेतना है, उस शुद्ध चेतना को हम सारे प्रदूषण से अलग करें। इसलिए कई बार यह देखा गया है कि जब हम भगवान का नाम जब शुरू करते हैं तो प्रदूषण ज्यादा दिखता है। प्रदूषण और कहीं से ज्यादा नहीं आया, अभी दिख रहा है केवल। जो कभी दिखा नहीं प्रदूषण, अब दिखना शुरू हुआ है। जैसे मुझे याद है, पहले तो ये सब एक्वा गार्ड वगैरह नहीं हुआ करता था इतना। हम बचपन में देखते थे कि वो म्युनिसिपैलिटी का पानी जमा किया और उसमें वो फिटकरी घुमाई। आजकल भी करते हैं, फिटकरी घुमाते हैं तुरटी। तो उसको घुमाने से होता क्या है कि जितनी भी गंदगी है उस पानी में, वो पूरा नीचे सेटल हो जाता है, उसके सतह पर जम जाती है गंदगी। और तब ठीक से आपको पता लगता है, ये पानी मैं पी रहा था। तब तक पानी एकदम, क्या गड़बड़ है पानी में, पियो क्या, म्युनिसिपैलिटी की देन है। तो बिल किसका भर रहे हैं? वो प्रदूषण। तो कई बार इस भौतिक संसार में जीव को इतना भी भान नहीं कि उसकी चेतना में कितना प्रदूषण है, जब तक कि फिटकरी नहीं घुमाई जाए। तो हम लोग जो ये सत्संग में आकर बैठते हैं, यहां पर हम कर क्या रहे हैं? फिटकरी घुमा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा, कोई यदि आपसे पूछे, भाई आप हरे कृष्ण मंदिर में हर रविवार को जाते हो, क्या करते हो उधर? फिटकरी घुमाते हैं। तो क्या समझ में आएगा उसे? या आप किसी को न्योता दो, आइए रविवार के कार्यक्रम में, बोले क्या करेंगे उधर? फिटकरी घुमाएंगे, आएगी। तो यह हमारी जो शुद्ध चेतना है, जो प्रदूषित हो गई है, उसे यदि हमें शुद्ध करना है, तो हमें ये जो पद्धति है हरिनाम संकीर्तन की, इसके द्वारा ये जो प्रदूषण है, इसे शुद्ध जल से, शुद्ध चेतना से अलग करना होगा। तो ये एक प्रकार की प्रतिकूल शिक्षा हम वर्षा के जल से ये सीख सकते हैं कि वर्षा का जो जल है वो प्रदूषित होने की संभावना बहुत रहती है उसमें। वैसे ही हमारी चेतना, और इसलिए यदि हमें इस भौतिक संसार के कारागृह से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले अपना जो प्रदूषण है उसे पहचान लेना है कि हां ये इस प्रकार का प्रदूषण मेरे अंदर है। कई बार तो लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि उनकी चेतना दूषित है। एक बार एक राजा अपने राज्य में, वो हर समय कुछ महीनों बाद अपना रूप बदलकर राज्य में घुमा करता परखने के लिए कि उसके राज्य का कारभार कैसा चल रहा है, क्योंकि यदि वो राजा के वेशभूषा में घूमता तो सभी ठीक चलता उसके सामने। ऐसा होता है ना, जब राजा कहीं पर जाता है और समाचार देकर जाता है तो सभी लोग, राजा आ रहा है, सब साफ रखो, ठीक रखो। जैसे नेता कभी आते हैं, हमारे प्रधान कौन आए थे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आए थे, इसी साल आए थे, तो पूरे नासिक में, नासिक को पूरा चमका दिया गया। तो ये राजा जानता था कि यदि मैं सूचना देकर जाऊं तो सब जगह चमका दिया जाएगा और मेरे लिए, मेरे लायक बना दिया जाएगा। परंतु वो राजा अपना भेष बदल कर जाया करता देखने के लिए। तो एक बार राजा, उसने सोचा कि मैं अब तक कभी अपने राज्य के एक जेल में नहीं गया देखने के लिए, सेंट्रल जेल, कारागृह में अभी तक मैं कैदियों से मिलने नहीं गया। तो राजा ने अपना भेष बदल कर वो कारागृह में गए और कारागृह में वहां पर देखा कि एक सेल में, एक कारागृह में चार कैदी थे। तो एक एक कैदी को पूछा कि भाई क्यों यहां पर हो, कारण क्या है। तो सबसे पहले कैदी ने कहा, अरे ये राजा फालतू का, पता नहीं क्यों मुझे यहां पे बंदी बना के रखा है, कोई अकल नहीं उसे, ठिकाना नहीं। अरे मैंने कोई गलती नहीं की, केवल मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने घी में मिलावट की। अरे जिन्होंने घी खाया वो मरे तो नहीं ना, जी रहे हैं वो, तो क्या सबूत है कि मैंने मिलावट की, बस झूठ आरोप मेरे ऊपर लगा दिया, मैं बेकसूर, मुझे यहां पर अंदर डाल रखा है पता नहीं कब से और कब तक डालेंगे पता नहीं। तो दूसरे कैदी को पूछा, और तुम्हारा क्या कहना है, मेरा भी वही हाल है कि अरे मैं एक जौहरी और मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने सोने के आभूषण में से सोना चुरा लिया। कोई जौहरी ऐसा काम करता है? अरे चोर चुराते हैं सोना, जौहरी करेगा ऐसा काम? तो राजा पूछता है, तो तुम भी बेकसूर यहां पर बंदी हो? हां मैं भी बेकसूर। तब फिर तीसरे से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या कहना है, तुम यहां पर क्यों हो? तो उसने कहा कि भाई मैं उस गांव का जमींदार और मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने किसान की जो फसल है वो अपने गोदाम में भर ली। अरे भाई किसान की फसल है, गोदाम मेरा है, तो मेरे गोदाम में किसान की फसल क्यों आएगी? तो राजा ने भी कहा क्यों आएगी? वो राजा कुछ ठीक से जांच परखता नहीं और बिना किसी सबूत के अंदर बंद कर दिया मुझे यहां पर। तो राजा ने पूछा, तुम भी बेकसूर हो? हां मैं भी बेकसूर। तो फिर चौथे कैदी से पूछा कि तुम्हारा क्या कहना है? तो चौथे कैदी ने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं मैंने जो गलती की, और मैं मानता हूं कि मैं कसूरवार हूं। तो राजा ने पूछा, भाई तुम मानते हो तुमने गलती की, तुमने अपराध किया? हां। क्या किया तुमने? उसने कहा कि मैंने अपने गांव के एक व्यक्ति के साथ झगड़ा किया और झगड़े झगड़े में मैंने उसे इतना मारा कि उसके प्राण चले गए और मुझे इतना नहीं मारना चाहिए था उसे, और मैंने बहुत बड़ी गलती की और उस गलती के वजह से जो मुझे सजा मिल रही है वो बहुत कम है। मुझे तो फांसी पर लटका देना चाहिए था, परंतु फिर भी अभी तक जीवित छोड़ा है राजा ने, तो राजा की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। तो राजा ने पूछा, तो तुम अपने आप को कसूरवार मानते हो? उसने कहा, हाँ, मैं कोई सफाई नहीं पेश करना चाहता कि मैं बेकसूर हूं या नहीं, मैं कसूरवार हूं, मैंने खून किया किसी का। तो राजा ने तुरंत वो जेलर को बुलाया और जेलर से कहा कि देखो, ये जो तीन कैदी हैं ये बेकसूर हैं और ये एक खूनी है, और तुमने इन चारों को एक साथ बंद रखा है। अरे ये जो कसूरवार, ये जो खूनी है, इसका संग यदि ये बाकी तीन करेंगे तो ये भी खूनी बन जाएंगे। तो जेलर ने कहा, तो क्या करूं मैं, इनको अलग रखो। अलग कैसे रखूं? बोले, ये एक को बाहर निकालो। वो एक को बाहर निकाला, इसे जाने दो बाहर, मुझे इन तीन को बचाना है क्योंकि ये बेकसूर है। तो राजा ने कहा, क्योंकि तुम तीन बेकसूर हो इसलिए तुम अपना अपना संग करो इस जेल के अंदर, और तुम्हें इस खूनी से मैं अलग रखना चाहता हूं इसलिए इसे छोड़ रहा हूं। तो जब हमें पता लगेगा कि हमारा प्रदूषण क्या है, जब हम मानेंगे कि हां मेरी ये गलती है, मेरे अंदर ये प्रदूषण है, वहां से शुरुआत होती है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण की जो पद्धति है उसकी शुरुआत वहां से होती है। तो वर्षा के जल से हम सबसे पहले ये सीख सकते हैं कि जैसे वर्षा का जल, वो प्रदूषित होने की उसमें संभावना होती है, परंतु शुद्ध भी होने की संभावना होती है, वो हम अनुकूल शिक्षाओं में लेंगे। तत्पश्चात दूसरी शिक्षा हम ये देखते हैं, वर्षा का जो जल वो इसी सृष्टि में भ्रमण करता रहता है। कैसे? कोई अलग नहीं है वो जल। वो जल कहां से आया है? समुद्र का जल जो वाष्प में परिवर्तित होकर बादलों में समाविष्ट होता है, और फिर वही बादलों से वो वर्षा का जल जब नीचे बरसता है तो वही नदियों में, सरोवरों में परिणित होकर फिर से उसी समुद्र में जाता है, और उसी समुद्र से फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। तो जल वही है, केवल वो जब समुद्र में आता है तो नमकीन हो जाता है, और फिर जब बादलों में जाता है तो मीठा। जल वही है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जो जीव जब इस भौतिक संसार में आता है, जब जीव इस भौतिक संसार में आता है तो वो इस ब्रह्मांड में ही भ्रमण करता रहता है। ब्रह्मांड भ्रमिते, सारे वही जीव हैं परंतु केवल यहां वहां अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, और उस भ्रमण को वो जीव अपनी प्रगति मानता है कि मैंने कितनी प्रगति कर ली। देखो, और हम स्कूल में पढ़ते हैं, देखो हम सब बंदर थे, बंदर से हम क्या बने, देखो। हम एक लंदन में एक जगह पर गए थे कार्यक्रम के लिए, तो वहां पर हमने देखा कि पता नहीं आजकल भारत में भी वो है, उसे ट्रैम्पोलिन कहते हैं, उस पर कूदते हैं लोग, वो स्प्रिंग जैसा कुछ होता है और उस पर, यहां पर भी है भारत में भी, परंतु वो इतना बड़ा था वो स्प्रिंग बोर्ड जैसा, और उस पर कुछ बच्चे वो ऐसे पोल से बांधे हुए थे उनके कंधे, और ये जो अपने मंदिर का जितना हाइट है इससे भी ज्यादा ऊपर तक वो ऐसा कूद रहे थे और सभी लोग देख रहे थे उनको खड़े होकर। तो हमने सोचा कि डार्विन ने कहा था कि हम बंदरों से मनुष्य बने हैं, परंतु डार्विन यदि आकर, वो भी वहीं का था लंदन का, यदि डार्विन यदि आकर देखेगा तो फिर से क्या लिखेगा, अरे इतनी मुश्किल से तुम लोग बंदरों से मनुष्य बने और फिर से बंदरों की तरह फुदक रहे हो, और बंदर जब फुदकते हैं तो कोई खड़ा होकर देखता नहीं उन्हें, कभी देखा है सब मनुष्य खड़े होकर देख रहे हैं बंदर कैसे कूदते हैं, परंतु जब मनुष्य बंदरों की तरह कूदने लगता है तो सभी घेराव कर देखते हैं। तो हम भ्रमण कर रहे हैं नाना योनि भ्रमतीव, कि अलग अलग योनियों में ये जीव भ्रमण कर रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जैसे कि ये जो फाउंटेन है इसका पानी, ये फाउंटेन का पानी अंदर ही अंदर घूमता रहता है, ये मत समझना कि वहां से कोई नदी बह रही है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि दीवार से पानी कहां से आ रहा है, पीछे कोई नदी है या कोई बहुत बड़ा वाटरफॉल पीछे, यही पानी वो नीचे एक मोटर फिट किया गया है, हमारे गोपालन प्रभु ने किया है तो उनसे आप पूछोगे तो बताएंगे कि वही पानी है, और वही पानी इतना ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना पानी है। एक बार एक भक्त जब वो ये चालू हुआ बंबई से आए थे तो उन्हें डर लग गया, अरे बाहर आ जाएगा, उन्हें लगा कि पूरे मंदिर में बाढ़ आ जाएगी, इतना पानी सामने से गिर रहा है, मतलब इसमें से एक बूंद भी बाहर नहीं आने वाली, वहीं पर पानी घूमता रहता है। तो अब देखोगे तो इतनी हलचल है इस पानी में, उथल पुथल है, हलचल है इस पानी में, परंतु वो पानी की कोई प्रगति कहीं पर नहीं हो रही, वहीं पर गोल 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 गोल। तो वैसे ही जीव इस भौतिक संसार में बहुत उथल पुथल कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, परंतु केवल उन 84 लाख योनियों में, जैसे जल की तरह इसी के अंदर, उससे बाहर नहीं। इसलिए हमें उस प्रकार का जल बनना है जो कि इस चक्र से बाहर निकल सके, उस प्रकार की चेतना हमारी बनानी है ताकि हम इस भौतिक संसार के इस चक्र को काट कर भगवान के धाम तक जा सके। और जब हम वर्षा के जल को देखते हैं तो हम इस प्रकार की शिक्षा उस जल से ग्रहण कर सकते हैं। तीसरी शिक्षा, वर्षा का जल मीठा होने के बावजूद नमकीन समुद्र की ओर दौड़ता रहता है। सोचिए उसके अंदर मिठास है, परंतु स्वाभाविक रूप से वो जल जहां कहीं पर भी हो सभी सरोवरों का नदियों का जल जो है वो कहां का है, वर्षा का, और वो कहां बहता रहता है वो जल, समुद्र की ओर। इसलिए समुद्र की तुलना की गई है जन्म मृत्यु के भवसागर से, और वर्षा के जल की तुलना हमारी चेतना। तो इस भौतिक संसार में यह वर्षा का जल जो स्वाभाविक रूप से उस नमकीन समुद्र की ओर जा रहा है, हालांकि वो जो नमकीन समुद्र है वो किसी काम का नहीं मनुष्य के एक दृष्टिकोण से। जबकि कहीं पर अकाल पड़ जाता है तो वो समुद्र का जल कोई काम का नहीं। इसलिए नीति शास्त्र में एक उदाहरण दिया गया है कि कई बार कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हो, परंतु यदि उसके मन में दया भावना नहीं है तो उसका ऐश्वर्य समुद्र के जल के समान है। कि कोई यदि भूखा प्यासा समुद्र के तट पर जाए तो एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता उसका, हालांकि इतना जल है। तो जब कोई बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति परंतु मन में उसकी दान की भावना या कृपा की भावना नहीं, तो उसके पास यदि कोई चला भी जाए तो क्या मिलेगा? नमकीन खारा पानी। और इसके विपरीत कोई साधारण से साधारण व्यक्ति परंतु उसके अंदर यदि कृपा दान की भावना है तो वो कुएं के जल के समान है, बहुत कम मात्रा में देखा जाता है। किसकी तुलना में? समुद्र की तुलना में, परंतु कम से कम प्यास तो बुझाता है। तो जीव की जो चेतना है वो चेतना अब इस भौतिक संसार में रहते हुए उस वर्षा के जल के समान हो गई है जो स्वाभाविक रूप से इस भव सागर की ओर दौड़ती रहती है, जन्म मृत्यु। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि फिर से यदि हम अपने आप को पहचान गए हैं कि हमारी चेतना प्रदूषित हुई है इस भौतिक संसार में, तो कैसे हम अपनी चेतना को शुद्ध करें और नमकीन खारे भव सागर रूपी जन्म मृत्यु समुद्र की ओर अपनी चेतना को न अग्रसर करें। तो ये तीसरी शिक्षा हम लेते हैं। एक और प्रतिकूल शिक्षा ये है कि वर्षा का जल अनावश्यक सत्वों पर गिरता है जहां पर कोई जरूरत नहीं गिरने की, जैसे समुद्र के ऊपर। समुद्र में पहले से इतना जल है, जैसे बंबई शहर में, वहां पर वर्षा के वजह से लोग परेशान हैं, बाढ़ आती है, मरते हैं लोग। और कई ऐसी जगह है जहां पर जरूरत है जल, वर्षा के जल की, और वहां पर एक बूंद नहीं। तो बंबई में, हालांकि वैदिक संस्कृति के अनुसार वर्षा कब होनी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार पहले के युगों में वर्षा केवल रात्रि में हुआ करती थी और पूरे दिन भर किसानों को काम करने के लिए सूर्य का प्रकाश होता, और केवल रात्रि में वर्षा होती ताकि जो भी दिन भर काम किया है उस पर पानी बरसाने के लिए बादल बरसात देते थे। और वो इसलिए क्योंकि सभी पुण्य कर्म करते थे, तो पुण्य कर्म के वजह से वर्षा सही जगह पर और सही समय पर होती थी। और कलयुग में सब कुछ उल्टा। हालांकि पता नहीं कलयुग में लोगों की रात और दिन कब है, ये भी नहीं समझ में आता, परंतु फिर भी रात्रि के समय जब सभी लोग सोते हैं तभी वर्षा होनी चाहिए शास्त्र के अनुसार, परंतु दिन भर चालू है बरसात और फिर इतना पानी, बाढ़, ट्रेन रुक जाना, बस रुक जाना, लोगों को इतनी तकलीफ। कई बार कुछ साल पहले तो मर गए कितने लोग। तो यहां पर जीव की चेतना, उसकी तुलना की गई है कि जीव की चेतना अनावश्यक जगहों में ज्यादा लगती है जहां पर कोई जरूरत नहीं अपनी नाक डालने की। वहां पर देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर दौड़ते फिरते हैं जहां पर कोई आवश्यकता नहीं उस जीव को, जैसे कि मनुष्य। अब देखिए, मनुष्य जीवन हमें मिला है आत्म साक्षात्कार करने के लिए, परंतु इस आत्म साक्षात्कार की विधि को छोड़कर आप देखिए मनुष्य किन किन कार्यों में लगा हुआ है, जिसका कोई तथ्य नहीं होगा उसके उद्देश्य से। मैं अपने केकेवाग कॉलेज में ये उदाहरण दे रहा था कुछ दिन पहले कि अमेरिका के कई वैज्ञानिक, वो अलास्का करके एक जगह है, वहां के जंगलों में बहुत सालों से बैठे हुए हैं और वो कर क्या रहे हैं उस जंगलों में, वहां के कुछ मच्छर हैं, अलास्का के मच्छर, उन मच्छरों की पाचन क्रिया कैसे चलती है उसका निरीक्षण करने के लिए वो इतने सालों से वहां पर बैठे हुए। अब सोचिए मच्छरों की पाचन क्रिया जानने से इनका क्या भला होने वाला है या किसी का क्या भला होने वाला है। और वहां पर उनको खाने के लिए तो ज्यादा कुछ मिलता नहीं, तो जो कुछ पैक किया हुआ ब्रेड और पाव और वो बर्गर और ये सब कुछ, और वो खा खा के इनकी पाचन क्रिया खराब हो रही है। वो मच्छर तो अपना प्राकृतिक जो कुछ मिल जाए, हो सकता है कि वो मच्छर इनका खून पिए तो उनकी पाचन क्रिया और खराब हो जाएगी। तो जहां पर कोई जरूरत नहीं वहां पर जीव यहां घुसा हुआ है सब अनावश्यक कार्यों में। इसलिए ये जो एक वर्षा के जल से ये एक शिक्षा हम सीख सकते हैं कि हमें कौन सी आवश्यक जगह पर जाना चाहिए, कौन सी आवश्यक वस्तुओं के संपर्क में आना चाहिए, व्यक्तियों के संपर्क में आना चाहिए, ताकि हमारी चेतना हमारे मूल उद्देश्य पर बनी रहे। पांचवी शिक्षा, हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में हरियाली चारों तरफ दिखती है, सरोवर बन जाते हैं और अलग अलग प्रकार के नए नए जलाशय बनते हैं। ऐसे ऐसे जगहों पर जहां पर पहले कभी कोई जलाशय नहीं दिखा गया, वर्षा ऋतु में जलाशय दिखते हैं, परंतु वो केवल अल्पकाल तक। कब तक? जब तक कि वर्षा है तब तक। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार का जो ऐश्वर्य है वो भी अल्पकाल तक रहता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ये समझ ले कि ये जो हरियाली है और ये जो सरोवर में इतने सारा जो जल है ये पूरा 12 महीने तक रहेगा, तो वो व्यक्ति अल्प बुद्धि का है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति ये समझ ले कि मेरा ये ऐश्वर्य ये दीर्घ काल तक रहेगा या नित्य काल तक रहेगा, तो वो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है। ये हम वर्षा ऋतु में ये जो स्थिति पाई गई है इसे केवल इसका मुआयना करने से समझ सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उस प्रकार से एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वर्षा ऋतु की इस स्थिति को देखकर वो समझ लेता है कि ये जो संसार है वो अशाश्वत है, नश्वर है। इसमें चाहे कोई कितना भी ऐश्वर्य कमाए वो सब एक न एक दिन खत्म हो जाने वाला है। ये सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर, उनकी नजर है देखने की कि हम देखते हैं कि जो पगडंडियां होती हैं, पगडंडियां समझते हैं आप? नहीं, पाउल वाट, समझे? समझ गए सब लोग? तो पौल वाट की वाट लगती है। कैसे? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये सारी जो पगडंडियां हैं पौल वाट, ये बारिश में, क्योंकि लोग घर से बाहर तो निकलते नहीं, लोग घर से बाहर निकलते नहीं तो ये जो पगडंडियां हैं इन पर बड़ी बड़ी घनी घास छा जाती है, और फिर समझ में नहीं आता कि वो जो पगडंडी यहां से खेत तक या खेत से घर तक जो थी वो कहां गई पगडंडी, क्योंकि पगडंडी को चल चल कर लोग अपना रास्ता निकाला करते थे पौल वाट को देख देख कर। तो बारिश के मौसम में कम उस पर चलने की वजह से वो घने घास से घिर जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं उसी प्रकार से कलयुग में जो भगवत प्राप्ति का पथ है उस पर कोई नहीं चल रहा, इसलिए वो जो पगडंडी है भगवत प्राप्ति की जो पगडंडी है उसके ऊपर इस कलयुग रूपी घनी घनी घास छा गई है जो कि उस पथ को बिल्कुल ढक दिया है, इसलिए वो पगडंडी दिखाई भी नहीं देती कि वो कहां पर है, तो चले कैसे फिर। एक बहुत गहरा तात्पर्य सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं कि इसलिए कलयुग में हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है कि जो ढूंढ ढूंढ कर उन पगडंडियों के ऊपर का जो घास है उसे दूर करे। तो जब भगवान के बड़े बड़े पार्षद भक्त आते हैं तो उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है कि उस भगवत प्राप्ति के पगडंडी को खोज कर निकालें और उसके ऊपर जो चढ़ी हुई घास है उसे दूर करें और लोगों को दिखाएं कि ये असली पथ है जिसके ऊपर आप लोगों को चलना है। क्यों? क्योंकि ये पगडंडी आपको आपके असली घर तक ले जाएगी। और इसके विपरीत जो दूसरी गलत पगडंडी बना चुके हैं लोग उसे बंद करना है, और उसे बंद करने की भी आवश्यकता नहीं, अपने आप जब इस पगडंडी पर जो असली घर के जाने की जो पगडंडी है उसके ऊपर जब जीव चलना प्रारंभ करेगा तो अपने आप वो बाकी सारे रास्ते भूल जाएगा। तो ये कलयुग की स्थिति को देखते हुए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये वर्षा ऋतु से एक शिक्षा दिला रहे हैं। अधिक वर्षा से बाढ़ आती है जिससे खेत खलियान के बांध टूट जाते हैं। यदि आपने देखा होगा कि खेती कैसे करते हैं तो छोटे छोटे बांध बांधे जाते हैं और एक जगह से पानी का सिंचन होता है, वहां से वो पानी पूरे खेत तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि बांध बांधे गए हैं। परंतु वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने के वजह से वो बांध टूट जाते हैं और फिर समझ में नहीं आता कि किसान ने बांध कौन से खेत के लिए कहां बांधा था। देखा है आपने कभी? तो उससे होता क्या है कि वो जो खेत है जिसमें जितना जल जाना चाहिए उससे अधिक जल जाने के वजह से खेत मर जाता है। तो जहां पर जल जाना चाहिए जितनी मात्रा में नहीं जाता तो खेत मर जाता है, उसमें खलियान मर जाते हैं। तो यहां पर हमारे खेत की तुलना या हमारी चेतना, हमारी भक्ति की तुलना उस खेत से की गई है और उस खेत में पानी का सिंचन कराने के लिए जो बांध है उस बांध की तुलना वैदिक शास्त्रों से की गई है। और कलयुग में अधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण ये वैदिक शास्त्रों का जो बांध है वो टूट जाता है। ये कैसे समझेंगे हम? कि कलयुग में आप देखोगे कि वैदिक शास्त्रों के पालन करने का ढोंग कलयुग में सबसे ज्यादा होता है, वो अधिक वर्षा के समान है। जैसे कि कर्मकांड की जो विधियां हैं, इन कर्मकांड की विधियों को पालन करने का जो ढोंग कलयुग में जितना होता है और कोई युग में नहीं होता। जैसे कि लोग कुंभ मेला इत्यादि में इतनी मात्रा में जाते हैं, पहले के युगों में कुंभ मेला में इतनी मात्रा में लोग नहीं जाया करते थे, करोड़ों की संख्या में। इसका अर्थ शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि यह नहीं कि कलयुग में ज्यादा आध्यात्मवादी लोग बन गए हैं कि इतनी मात्रा में जाते हैं, क्योंकि भौतिक इच्छाएं इतनी गहरी हो गई कलयुग में कि चाहे कुंभ हो या निकुंभ हो या कोई कुंभ न हो, जहां पर हम हमारे पाप डालकर आ सके और फिर से इंद्रिय भोग शुरू कर सके, तो ज्यादा उस धारणा में लोग पहुंचते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि कई मंदिरों में दर्शन के लिए लाइन इतनी लंबी होती है कि कई दिनों तक खड़ा रहना पड़ता है लाइन में, तो कोई देखेगा क्या भक्ति है लोगों की, तीन तीन चार चार दिन लाइन में खड़े हैं। परंतु साधारणतः वो शुद्ध भक्ति के लिए वहां पर नहीं खड़े। जब वो उन अर्च विग्रह के सामने जाते हैं तो हाथ जोड़कर उनसे शुद्ध भक्ति नहीं मांगते, धनम देही जन्म देही पुत्रम देही स्वर्गम देही नरकम देही। जैसे कि मुंबई में, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बिलबोर्ड मैंने पढ़ा था, वो अंग्रेजी में था, जिसमें लिखा गया था, उस पे लिखा था, हेवन माइट हैव अ गुड वेदर बट आई हैव अ ग्रेट कंपनी इन हेल, इसलिए मुझे नर्क जाना है, वहां पर मेरे जैसे लोग मिलेंगे, सब प्रकार के मेरे दिव्य काम करने वाले। तो ज्यादातर देखा जाता है कि कलयुग में, इसलिए वैदिक शास्त्रों के अनुसार 96% वैदिक शास्त्रों में कर्मकांड के विषय में कहा गया है, ये करो तो ये मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा, और केवल 4% शुद्ध भगवान कृष्ण की भक्ति बताई गई है, क्योंकि 96% केवल उसी के पीछे भाग रहे हैं, और केवल कोई बहुत विरला कोई व्यक्ति होता है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति चाहता है। तो इसलिए यह उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं कि इस कलयुग में अध्यात्म का पालन ज्यादा दिखता है, अधिक वर्षा जैसे उस खेत पर जब गिरती है तो वो खेत की भलाई के लिए नहीं होती वो वर्षा, तो वैसे ही ये जो तथाकथित अधिक अध्यात्म का पालन कलयुग में जो दिखता है वो उस जीव की भलाई के लिए नहीं, समझ में आ रहा है? तो ये भी एक बहुत गहरी शिक्षा सुखदेव गोस्वामी इसके द्वारा हम सबको दे रहे हैं कि जब हम इस दृष्टांत को देखते हैं तो क्या हम सीखें। आठवीं शिक्षा, वर्षा ऋतु में अनेक जुगनू टिमटिमाते दिखते हैं, है ना? देखा आपने जुगनू, क्या बोलते हैं, काजवा। तो ये जो काजवा जुगनू होता है ये एकदम टिम 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 करता, सुंदर दिखता है ना? और कई बार बचपन में हम क्या किया करते थे, उसे पकड़कर हाँ कांच माचिस में क्यों डालना है, अरे उसे देखने के लिए माचिस में डालेंगे तो क्या वो खाली वो माचिस की डब्बी दिखेगी शिप, तो उसे देखने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, उसके पास जाने के लिए बहुत आकर्षित रहते हैं ये जुगनू, है ना। परंतु यहां पर सुखदेव गोस्वामी जब ये उदाहरण परीक्षित महाराज को दे रहे हैं, संस्कृत में उसे खद्योत कहते हैं, जो आप लोग काजवा जिसे कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को बता रहे हैं तो ऐसा नहीं चलो जाकर थोड़ा जुगनू देखते हैं टिमटिमाते हुए, ये उदाहरण क्यों दिया गया है कि वर्षा ऋतु में ये जुगनू ज्यादा दिखते हैं। क्यों? एक कारण है कि जो सूर्य और चंद्र है वो घने बादलों से ढक जाते हैं, तो सूर्य और चंद्र का प्रकाश साधारणता नहीं दिखता, इसलिए ये जुगनू ये मौका पा लेते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सामने जुगनू का कोई प्रकाश नहीं टिक पाएगा। तो क्योंकि सूर्य और चंद्र का प्रकाश ढका हुआ है इसलिए मौका देखकर जुगनू चौका मारते हैं। तो ये जो टिमटिमाते हुए जुगनू हैं, इनकी तुलना सुखदेव गोस्वामी करते हैं जो तथा कथित गुरु भगवान मिथ्याचारी घूमते हैं कलयुग में, अपने आप को भगवान कहते हुए, अपने आप को अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद जो भी महामंडलेश्वर अखंडेश्वर, अपने आप को जो भगवान कहते हैं इस कलयुग में, उनकी तुलना इन जुगनुओं से की गई कि जो असली भगवान श्री कृष्ण का सूर्य जब ढक जाता है कलयुग के प्रभाव के कारण, तब ये जुगनू टिमटिमाते दिखते हैं। और आजकल तो लोग यहां तक पहुंच गए कि शास्त्रों में कहा गया है कि कल की अवतार आने वाले हैं कलयुग के अंत में, तो ये जानते हैं, ये जुगनू जानते हैं कि कल की आने वाले हैं अब से 427,000 साल बाद, तो बहुत टाइम है, तब तक हम बन जाते हैं। तो अपने आप को भगवान का अवतार बोल देना, अपने आप को कह देना कि मैं ही वो मसाया हूं, मसीहा हूं आपका, आपके उद्धार के लिए मुझे ही उन भगवान ने भेजा है, तो ये वो जुगनू की तरह टिमटिमाते हुए, जैसे ही वर्षा ऋतु के बीच में कई बार सूर्य का प्रकाश थोड़ा भी दिखता है तो सब जान जाते हैं, कोई फिर जुगनू की तरफ नहीं देखता। तो चैतन्य महाप्रभु जब वो शुद्ध कृष्ण प्रेमा भक्ति लाने के लिए इस कलयुग में अवतरित होते हैं, तो वो उस सूर्य उस चंद्र के समान है, गौर चंद्र उन्हें कहा गया है, को इन बादलों के बीच से भी वो अपना प्रकाश छोड़ रहे हैं। और इन जुगनों को यदि कोई देखे ध्यान से, तो मान लीजिए कि अंधेरी रात में जब किसी को कोई रास्ता ढूंढना है और वो हाथ में जुगनू को लिए, अंधेरे रास्ते को खोजने के लिए ये हाथ में जुगनू लिया है, तो क्या उस जुगनू की लाइट से वो अंधकार दूर कर पाएगा? तो जब एक दुर्भागी जीव इस कलयुग का ऐसे जुगनू की शरण ग्रहण करता है ये सोचते हुए कि ये जुगनू मेरे रास्ते का अंधकार दूर करेगा, अरे तुम्हारे रास्ते का अंधकार दूर करना तो दूर की बात है, वो जुगनू अपने अगल बगल जो उसकी छोटी सी पूंछ है उसको भी वो अंधकार से दूर नहीं कर सकता। कितनी लाइट होती है उस जुगनू के अंदर। तो वैसे ही ये ऐसे जो तथाकथित भगवान जो ढोंगी बाबा गुरु घूमते फिर रहे हैं, ये स्वयं का उद्धार भी नहीं कर सकते तो दूसरे का क्या करेंगे। श्रील प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, स्वामी जी आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो भगवान हूं यहां पर, आप कौन से भगवान के विषय में प्रवचन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कुछ कहे नहीं, प्रभुपाद अपना प्रवचन जारी रखे, फिर से आई एम दैट गॉड। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, मेरा दंडवत स्वीकार कीजिए भगवान, अभी बैठ जाइए और सुनिए आपके विषय में। जैसे कल मैं बता रहा था, हमारे इस्कॉन के एक मंदिर में एक व्यक्ति आए और वो भगवान के अर्च विग्रह को देखकर रोने लगे, एकदम भाव विभोर होकर भगवान के श्रृंगार को, अर्च विग्रह को देखकर रोने लगे। तो भक्तों को लगा कि शायद कोई बहुत महान भक्त होंगे कि भगवान के दर्शन मात्र से अश्रु आ रहे हैं आंखों से। तो उनका दर्शन वगैरह पूरा हुआ, उसके पश्चात भक्त जाकर उनसे मिले, कुछ पूछताछ की। तो जब उनसे पूछा गया कि आप इतने भाव विभोर होकर दर्शन ले रहे थे, तो ये व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं जब देखा इतना सुंदर श्रृंगार और इतने प्रेम भाव से पूजा हो रही है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मेरी भावनाओं को मैं रोक नहीं पाया। मैं सोचने लगा कि मैं धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूं कि कितनी अच्छी से आप लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। कितने प्रेम से, कितनी भावना से आप लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। देखिए ये स्थिति है, ये स्थिति है कि एक तो जुगनू वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा अंधकार दूर करूंगा। खैर इतना भी जुगनू कहता है तो बहुत बड़ा झूठ हो गया उसका, परंतु इसके ऊपर यदि जुगनू ये कहे कि मैं वो सूर्य हूं जो बादलों से यहां नीचे अवतरित हुआ हूं, तो फिर साधारणतः कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछ सकता है, तो तुम्हारे बगल वाला जुगनू वो कौन सा सूर्य है फिर। जैसे ये जो ये कल्कि अवतार बने बहुत से फिर रहे हैं भारत में, एक टीवी इंटरव्यू का कोई कार्यक्रम था इनमें, तो इसमें उन्होंने किया क्या कि जितने भी भारत में फैले हुए कल्कि अवतार हैं इन सबको बुलाया गया और किसी को भी बताया नहीं कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर को भी बुलाया है। तो वहां पर पैनल पर ये सारे जो लेटेस्ट कल्कि अवतार वहां पर, और वो एक दूसरे को पूछते हैं, आप कौन, आप यहां, मुझे बुलाया गया कल्कि अवतार, तुम कल्कि, किसने कह दिया, अरे मुझे बोला है मैं कल्कि अवतार। तो वहां पर आपस में सारे कल्कि लड़ने लगे और उसका शूटिंग इन्होंने किया और सबको दिखाया। ये देखिए ये है कल्कि अवतार जो हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं और सबसे पहले खुद के एक दूसरे के उद्धार के पीछे पड़े हैं। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर, हालांकि जुगनू सुंदर दिखते हैं, परंतु ये सुखदेव गोस्वामी ने इतना सुंदर उदाहरण लिया है कि जुगनू भी सुंदर दिखते हैं इनसे। अगली शिक्षा, घने बादल सूर्य तथा चंद्र के प्रकाश को ढक देते हैं। तो ये उदाहरण, ये जो दृष्टांत इसलिए दिया गया है कि जो शुद्ध चेतना है, आत्मा जो है, वो सूर्य चंद्र के प्रकाश के समान है और ये जो शरीर जो इस आत्मा के ऊपर एक पहनावा जैसा है, तो ये जो शरीर है, इस शरीर की तुलना घने बादलों से की गई है कि वर्षा ऋतु में सूर्य चंद्र का प्रकाश ज्यादा दिखता नहीं घने बादलों के वजह से, और बहुत कम बार आपको समझ में आएगा कि सूर्य और चंद्र का प्रकाश बादलों में से नीचे छलकता हुआ दिखता है। तो वैसे ही इस कलयुग में ये जो शरीर रूपी जो बादल आत्मा को ढका हुआ है, बहुत कम बार आत्मा अंदर है इसका अनुभव व्यक्तियों को होता है। जैसे बहुत कम बार सूर्य और चंद्र का अनुभव इस वर्षा ऋतु में देखा जाता है। तो ये सुखदेव गोस्वामी नौवीं शिक्षा दे रहे हैं, और आज की अंतिम शिक्षा कि वर्षा ऋतु में जो बिजली होती है, अस्थिर बिजली बादल बदलती दिखती है, कि जो बिजली है उस बिजली को एक बादल पर टिका होना चाहिए, परंतु वो बिजली किसी एक बादल पर कभी नहीं टिकी हुई दिखती, कभी इस बादल, कभी उस बादल या ये बादल। समझ में आ गया? नहीं। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि ये जो अस्थिर बुद्धि है जीव की, वो इस अस्थिर बिजली के समान है। कभी इस योनि तो कभी उस योनि, कभी इस देश तो कभी उस देश, कभी ये विषय वस्तु तो कभी वो विषय वस्तु, हर समय ये भौतिक बुद्धि जो होती है जीव की, ये उस अस्थिर बिजली के समान है जो एक बादल पर नहीं टिकती। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हमें उस बिजली के समान बनना है जो केवल एक बादल पर टिके, और वो एक बादल कौन है? श्री घनश्याम, जो कि घने बादल के समान, जिनका वर्ण है घनश्याम वर्ण के, ये जो बादल हैं, ये जो हमारी बुद्धि अलग अलग प्रकार के बादलों पर घूम रही है, जब तक हमारी बुद्धि इन एक बादल पर नहीं टिकती, तब तक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो जो बुद्धि है वो एक वैश्या के समान है। बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल किए, जैसे कि वैश्या किसी एक पुरुष के साथ संग नहीं करती, तो ये जो अस्थिर बुद्धि, ये जो अस्थिर बिजली उस पुंश्चली वैश्या के समान है जो किसी एक आराध्य देव को नहीं मानती। और वो एक आराध्य देव जिसकी शरण इस बुद्धि को करनी है वो है ये घनश्याम, वो बादल है ये बादल। और इसके पश्चात फिर सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं कि कौन से 10 अनुकूल शिक्षाएं हम इस वर्षा ऋतु से ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हमें जब हम इस वर्षा ऋतु में अपना जीवन जी रहे हैं तो आंख बंद कर नहीं, आंख खोलकर ये देखना है कि सुखदेव गोस्वामी ने वर्षा ऋतु के इस पहलू से मुझे क्या शिक्षा दी, और क्या मैं उस शिक्षा को अपनी साधना भक्ति में अपना पा रहा हूं कि नहीं। और विशेष रूप से ये जो अंतिम शिक्षा आज की सुखदेव गोस्वामी की, कि हमारी अस्थिर बुद्धि को उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ही बनाए रखना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस बुद्धि के विषय में कहते हैं गीता में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम उपयान्ति ते मतम। कहते हैं कि जो हर समय सतत रूप से मेरे कीर्तन में लगा रहता है, जो हर समय प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति से उस व्यक्ति की बुद्धि मैं अपने में लगाता हूं। तो ये जो बिजली, ये जो अस्थिर बुद्धि हमारी है, इसे भगवान ही पकड़कर अपने चरण कमलों में लगाएंगे जब हम भगवान का सतत कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगले रविवार को हमारी चर्चा होगी वर्षा ऋतु से 10 अनुकूल शिक्षाएं कौन कौन सी है। तो यदि ये पिक्चर का अगला भाग, अभी क्या हुआ है, इंटरमिशन, अभी इंटरमिशन हुआ है, और इंटरमिशन में लोग करते क्या है, खाते पीते हैं ना, तो अभी थोड़ा खाना पीना होगा और तत्पश्चात फिर इंटरमिशन अगले रविवार को होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।